नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायब सिंह सैनी हरियाणा में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए, वे कल मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चेतावनी दी कि सीमा पार से होने वाली आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियां व्यापार तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयासों को कमजोर करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज शाम मोरिटोनिया पहुंचेगी और सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से संबंधित आदेश का पालन न करने पर हरियाणा और पंजाब सरकार की आलोचना की। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में श्री अब्दुल्ला और उनके मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री और सकीना इतू, जावेद राणा, जावेद धार और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश शर्मा मंत्री के रूप में शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उमर अब्दुल्ला को लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए श्री अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी पर्यवेक्षक अमित शाह ने आज पंचकुला में पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। वरिष्ठ विधायक अनिल विज और कृष्ण कुमार बेदी ने श्री सैनी के नाम का प्रस्ताव किया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था और पार्टी को चुनाव में शानदार जीत मिली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरदोली समेत कई नेता बैठक में उपस्थित थे। श्री नायब सिंह सैनी भाजपा विधायक दल के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलेंगे और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में आयोजित होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अर्थव्यवस्था और विकास के लिए शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि सीमा पार से होने वाले आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधियां व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयासों को बाधित करती है। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने बताया कि जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियां, आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताएं और वित्तीय उथल पुथल से दुनिया भर में विकास और वृद्धि की गतिविधियां पहले से ही प्रभावित हो रही है। विदेश मंत्री ने ऋण को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि देशों के बीच सहयोग, परस्पर सम्मान, संप्रभुता का आधार और भौगोलिक अखंडता की मान्यता पर आधारित होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से संसाधन जुटाने, निवेश आकर्षित करने और व्यापारिक ढांचे का विस्तार करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु के मुद्दे पर कार्रवाई परस्पर लाभकारी सहयोग के प्रमुख क्षेत्र है। डॉ. जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की व्यवस्था में भारत के वैश्विक प्रयासों के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा आपदाओं का मुकाबला करने वाले आधारभूत ढांचे से जुड़े गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। विदेश मंत्री ने डिजिटल प्रणाली, योग तथा श्री अन्न के महत्व और इस दिशा में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार लाने की भी पैरवी की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और उसके प्रभावशाली भूमिका, व्यापक सुधारों से विकासशील देशों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी। तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया से मोरिटानिया के लिए रवाना हो गई है। राष्ट्रपति को गर्मजोशी से विदाई दी गई। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के प्रधानमंत्री नादिर लड़बोई और अन्य उच्च अधिकारियों ने विदाई दी। मोरिटानिया की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मोरिटानिया के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। केंद्र सरकार ने आज विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैपसीड और सरसों की फसलों में अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मसूर दाल में 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर रेल और सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये मार्ग कनेक्टिविटी को आसान करेगा, लॉजिस्टिक कीमत कम करेगा और तेल के आयात और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 2642 करोड़ रुपए होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि भत्ते में वृद्धि का लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का अनुपालन न करने पर न्यायालय ने हरियाणा और पंजाब राज्य सरकारों की आलोचना की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल हरियाणा सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पीठ ने उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की है। मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने हरियाणा के मुख्य सचिव को एक समन भेजा है, जिसमें उन्हें 23 अक्टूबर तक पेश होने के लिए कहा गया है। पंजाब के मुख्य सचिव को भी इस दिन अदालत में उपस्थित रहने और आदेश का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। ये बताने को भी कहा गया है कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 100 अरब डॉलर को पार करने के लिए तैयार है। ये वृद्धि मजबूत मांग और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसे सरकारी प्रयासों का परिणाम है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल हैंडसेट और आईटी क्षेत्र 75% से अधिक राजस्व में योगदान देकर बाजार में सबसे आगे है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोटिव उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। 2023 में इसके बाजार का मूल्य 45 अरब डॉलर था, जिसके 13% की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दुनिया भर के कुल डिजिटल लेन देन का 46% हिस्सा भारत में होता है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय 6G सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इस वर्ष अगस्त में 275 करोड़ डॉलर के लेन देन में से करीब 1.5 अरब UPI के माध्यम से हुई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। संचार मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 6G प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी देश होगा। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल इंडिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल सिद्धांत पर आधारित है। स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल का मुकाबला आज शाम फ्रांस के क्वेंटिन हेलिस से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:50 पर शुरू होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।